लघु वासुदेव मननम। जब हम लोग प्रतिदिन शांति पाठ प्रारंभ करते हैं, आज सोच रहा था कि संडे है तो इसीलिए, ऐसे तो कहते हैं संडे हो या मंडे कभी न पड़ो ठंडे, लेकिन संडे के दिन कई लोग ठंडे पड़ जाते हैं। सोचते रोज तो जाते ही टाइम से, आज थोड़े आराम से। 7:30 से 8:30 जो ये अनुष्ठान चलता है प्रतिदिन, इस बात की तो पक्की गारंटी है कि इस बीच में तो यमराज नहीं आएंगे, और इससे आगे पीछे की मैं कोई गारंटी ले नहीं सकता। जब तक हम शास्त्र चिंतन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, हां यदि स्वाध्याय करते हुए माला जपते हुए ऐसा हो भी जाए तो हम बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः जब हम असावधान अवस्था में होते हैं तभी यह सब होता है। ये जो स्वाध्याय प्रवचन में बैठते ही या इस समय हमें ये करना है, हमारी बुद्धि में एक सात्विकता आती है, और सात्विक वृत्ति में शरीर छूटे यमराज लेके जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये होता नहीं है। और जैसे प्रतिदिन यहां के कार्यक्रम को वेबसाइट में डालते हैं, दुनिया के लोग सब सुनते हैं, बीच में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो जहां लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों ने शायद यहां फोन भी किया, क्या बात है आजकल नहीं आ रहा है यहां का कुछ भी, तो उनका जो अपना अनुष्ठान है उनको तो कोई नहीं देख रहा है, कि मर्जी है सुने न सुने, लेकिन वे भी तत्पर हैं कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक जो वहां सत्संग चलता है सुनना है। ठीक वैसे ही हम लोग भी यहां सामूहिक रूप से बैठ करके जो ये कर रहे हैं ना, तभी उत्साह होता है, नहीं तो ये संडे क्या हो मंडे क्या हो, रोज लोग ठंडे पड़ जाएंगे। ये तो अपने आंतरिक इच्छा होती ना तभी होता है। तो ऐसा ये सामूहिक अनुष्ठान स्वाध्याय प्रवचन प्रतिदिन प्रेमपुरी आश्रम में जो चलता है, बड़े भाग्यशाली हैं। चार प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा, जिसके द्वारा आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति होती है, इसी को मोक्ष बोलते हैं। मुक्त हो गए, अभी तक दुखों का आना जाना लगा हुआ था, जब तक दुख आए और चला भी जाए, जाने के बाद फिर आने का जो भय रहता है, ये मोक्ष का स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए कह दिया आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, हमेशा हमेशा के लिए, और परमानंद की प्राप्ति। सामान्य आनंद भी हम लोगों को मिलता ही, लेकिन स्वकीय आनंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं, वह तो शास्त्र श्रवण करने के बाद परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान का क्या फल है, ये भी आप लोगों ने सुना। परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात्, और वह ब्रह्म ज्ञान होता है जिसके लिए कहा अध्यारोप और अपवाद पूर्वक, इसी से तत्व का निर्णय होता है। अध्यारोप का मतलब हुआ अज्ञान, अपवाद का मतलब हुआ ज्ञान। अध्यारोप में ये पूरा संसार आ जाता है, जो अज्ञान विक्षेप शक्ति का कार्य बताया, विक्षेप शक्ति का कार्य जो यह संसार है मोक्ष सिद्धि के हेतु है, और आवरण शक्ति जो है ये हम लोगों के संसार वृक्ष का मूल कारण है। अर्थात विक्षेप शक्ति के कार्य का विचार किया जाए तो धीरे धीरे हम इन अनात्म वस्तुओं से छूटते चले जाते हैं, और यदि प्रमाता को अपने ही स्वरूप का ज्ञान न हो, जो आवरण शक्ति का कार्य है, रस्सी का ज्ञान न हुआ तो सर्प दिखा, लेकिन सर्प देखने वाले को स्वयं का ही पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो प्रमाता के ज्ञान को जो ढक देता है, यही है आवरण शक्ति का कार्य। और ये दोनों आवरण शक्ति में भी फिर दो भेद किया, असत्व आवरण और अभान आवरण। हाँ, अभानापादक। अभान क्या है? वस्तु न भाती, ब्रह्म हमें नहीं मालूम क्या चीज है, और ब्रह्म नहीं है, वस्तु नास्ति, इसको बोलते हैं असत्व आवरण, और वस्तु न भाती इसको बोलते हैं अभान आवरण। इन दोनों की निवृत्ति कब होगी? जब वस्तु न भाती और वस्तु नास्ति। वस्तु नास्ति जो असत्वापादक आवरण है, वेदांत श्रवण करते ही परोक्ष ज्ञान से यह नष्ट हो जाता है, और अपरोक्ष ज्ञान से वस्तु न भाती ये जो अभानापादक जो आवरण है यह भी निवृत्त हो जाता है। तब जाकर के आत्मा के दुख का कारण जो शरीर, शरीर की प्राप्ति कर्म से, कर्म की उत्पत्ति राग आदि से, राग आदि अभिमान से, अभिमान अविवेक से, और अविवेक अज्ञान से। वस्तु के अज्ञान होने के कारण ही इतने बड़े संसार की प्राप्ति सबको हुई। अब आचार्य वासुदेव यति बता रहे हैं, लघु वासुदेव मननम का यहां पर विचार चल रहा है। अथ द्वितीय वर्ण के अनुबंध चतुष्टयम् उच्यते। अनुबंध चतुष्टय की कितनी बड़ी आवश्यकता है वेदांत शास्त्र में, साधकों के लिए बहुत जानना भी जरूरी है और कुछ अपने जीवन में आना भी जरूरी है। चतुष्टय का मतलब चार, चार चीजों के माध्यम से ही व्यक्ति शास्त्र पढ़ने के, श्रवण करने की इच्छा कर सकता है। जब तक ये चार चीजें नहीं होगी तो कोई भी शास्त्र पढ़ने में, ग्रंथ श्रवण करने में रुचि रखेगा ही नहीं। सबको ये रुचि क्यों नहीं होती, सब लोग शास्त्र श्रवण क्यों नहीं करना चाहते, तो शायद इन चीजों का अभाव होता होगा, तभी वह प्रवृत्त नहीं हो पाते। शास्त्र में प्रवृत्ति का कारण बता दिया। जब हम ग्रंथ पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहली बात उठती है कि विषय क्या है। लोक में भी यही होता है, भाई आज क्या सब्जेक्ट है, जिसको हम होटल में जाते बोलते हैं क्या मीनू है, कहीं मीनू नाम रख दिया, कहीं मजमून नाम रख दिया, कहीं विषय रख दिया, कहीं सब्जेक्ट बोल दिया। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, एक अच्छे संत हैं, उनको एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आजकल आप किस विषय पर प्रवचन कर रहे हैं? उन्होंने कहा, महाराज विषय अच्छी चीज नहीं है, मैं तो निर्विषय कथा करता हूं। अब बात भी सही है, ब्रह्म तो है ही निर्विषयक, ये तो सब विषय हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि के लिए हम लोगों को लक्षण भी करना पड़ता है और प्रमाण भी लेना पड़ता है। वास्तव में न तो कोई उसका लक्षण है, क्योंकि अलक्ष्य बोलते हैं उसको तो, और जो प्रमाणों से जाना जाए वो प्रमेय होता है, और आत्मा अप्रमेय है। तो अलक्ष्य में लक्षण किया और अप्रमेय का प्रमाण किया, फिर भी जब तक लक्षण और प्रमाण करेंगे नहीं तब तक वह ज्ञात होगा कैसे, इसके लिए इसका सहारा लेना पड़ता है। अलक्ष्य को लक्षण वाला बना दिया, अप्रमेय को सब प्रमेय बना दिया, ये सब केवल जानने की प्रक्रिया के लिए। वास्तव में ब्रह्म तो निर्विषयक ही है। तो उन्होंने कहा, मैं तो कोई विषय लेता ही नहीं, ब्रह्म निर्विषयक है, इसलिए मैं निर्विषय कथा करता हूं। तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि विषय क्या है। तो विषय है ब्रह्म, पहला साधन अनुबंध चतुष्टय की बात है। जिस विषय को हम जानने जा रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है? कई बार हम बात तो शुरू करते हैं किसी के बारे में या कोई चर्चा, लेकिन यदि वह निष्प्रयोजन हो तो जल ताड़नवत, पानी के ऊपर डंडे पीटने से उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। ब्रह्मसूत्र के भामती में जैसा आता है, कौए के दांत गिनने से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? पहले तो ये गिनना असंभव है। और यदि किसी ने कोई 30 मार खां कहे, मैं तो, लोग बोलते ना, मैं तो उड़ते हुए पक्षी के क्या गिन लेता हूं, पर गिन लेता हूं। तो उड़ते हुए पक्षी के पर गिनने के समान ही है ये कौए के दांत गिनना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। वैसे तो जल तारणवत न हो जाए, जिस विषय की चर्चा हो रही है उसका प्रयोजन क्या है ये भी देखना पड़ेगा। ये अनुबंध चतुष्टय का दूसरा लक्षण है। पहला है विषय क्या होना चाहिए और दूसरा हुआ प्रयोजन। तीसरा बता दिया संबंध। संबंध भी देखना चाहिए किसी के बारे में ना, इनका हमारा क्या संबंध है। जो शास्त्र हम यहां पढ़ने के लिए बैठे सुन रहे हैं, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, बोध्य बोधक भाव संबंध है। यहां पर प्रतिपाद्य का मतलब हो गया प्रतिपादन करने के योग्य, जिसका विचार किया जा रहा है वो है ब्रह्म, जो विषय है, ये हो गया प्रतिपाद्य। और जो इसका प्रतिपादन करे, प्रतिपादन करने वाला ये ग्रंथ, तो ब्रह्म के साथ इस ग्रंथ का जो है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है, इसी को बोलते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध। बोध्य मतलब वही प्रतिपाद्य, जानने के योग्य। बोध्य मतलब जानने के योग्य, बोध मतलब ज्ञान, और बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला। तो जिसका ज्ञान हो रहा है वो ब्रह्म, और जो ज्ञान करा रहा है वो यह ग्रंथ। तो बोध्य बोधक भाव संबंध और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, बात एक ही है। ये तीन चीजें होंगी, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है। जब तीनों चीजें हो गई, अब इसको जो पढ़ेगा वह अधिकारी कौन है, इसको बोलते अनुबंध चतुष्टय। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी, श्लोक भी है इसके लिए। तो ऐसे विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम अनुबंधम विना ग्रंथे मंगलम नैव शस्यते। मंगलाचरण करने से पहले ये देखना है, मंगलाचरण करने के बाद तो बात प्रारंभ हो गई, लेकिन मंगलम नैव शस्यते, उस मंगलाचरण के मंगल की प्रशंसा नहीं होती जहां पर ये चार चीजें न हो। विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम अनुबंधम बिना ग्रंथे, इन चारों अनुबंधों के बिना ग्रंथ में प्रवेश हो ही नहीं सकता, वह व्यक्ति ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रवृत्त होगा ही नहीं। एक लक्षण भी किया है, परिभाषा है नैयायिकों के द्वारा, ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम। अनुबंध किसको कहते हैं, तो ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति, बहुत सारे ग्रंथ हैं, नाम भी सुना है, क्या करें जी, समझ में नहीं आता, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। और जैसे जैसे इसको समझ में आने लग जाए तो रस आता है, फिर देखो पुस्तक को आप कितने प्रेम से संभाल के रखोगे, और नहीं तो दीमक लग गई, क्या हुआ। कई लोगों को पुस्तक खरीदने का और ढेर लगाने का शौक होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो एक एक पन्ने को ढंग से पढ़े और उसमें जो भाव दिया गया है उसको अपने अंतःकरण में उतारे। हाँ, पहले मन में उतरेगा तो जीवन में उतरेगा ना, पहले तो शास्त्र में क्या लिखा है इसको बार बार आलोडन विलोडन करो, और उसके बाद जैसे अब गीता आपने याद की है तो कभी ऐसे प्रसंग आता है, परिस्थिति आती है तो फट से याद आता है, हाँ वहां पर ज्ञान के इतने साधन बताए, भक्तों का ऐसा लक्षण किया है। तो जो इससे बार बार पढ़ा है, गीता याद की है, उसको चलते फिरते दिमाग में वो बात उपस्थित हो जाती है। अब गीता तो घर में है, समस्या है यहां, तो पुस्तक लेने क्या घर में जाएंगे। तो कहावत है, कंठ की विद्या और कमर का धन, वही काम में आता है। बाकी तो ठीक है, बैंक में पैसे हैं, अब बैंक आज बंद है, एटीएम में पैसे नहीं, क्या करोगे? तो जो कमर में वही काम में आएगा। और कंठ की विद्या, पुस्तक में तो सब लिखा हुआ है ही पहले से, हमारे मन में ये बात कितनी उतरी, उसके बाद फिर जब जब इसकी आवश्यकता होती है तो फिर ये काम में आते हैं। तो ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्ति कराने वाला जो प्रयोजक है, जो जोड़ता है हमें, वह ये चार चीजें हैं जिसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। तो ध्यान में रहेगा, विषयश्च अधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम्। प्रायः वेदांत के ग्रंथों में जहां नहीं भी इन चीजों का नाम गिनाया है, वहां अपने आप समझ लेना चाहिए प्रसंग के अनुसार। जैसे कि ब्रह्मसूत्रों में आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो अथ का वहां क्या अर्थ किया? आनंतर्यम, और आनंतर्य का अर्थ होता है इसके बाद। तो किसके बाद? तो साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम, ऐसा अर्थ निकलता है। साधन चतुष्टय संपत्ति के प्राप्ति हो जाने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, अर्थात उसको अपने आप ही ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। इसलिए वहां पर कर्तव्य लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि अथ में ही सब कुछ आ गया। यदि उसमें साधन चतुष्टय संपन्नता है, कुछ बात है, कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। एक उपदेश साहस्री नाम के ग्रंथ है, आप लोगों को पहले भी बताया था, उपदेश साहस्री, शायद हजार वाक्य होंगे उसमें, हजार उपदेश दिए होंगे, इसलिए उपदेश साहस्री नाम है उसका। उसमें एक आता है श्लोक, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततम् मुमुक्षवे। प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त शांत हो चुका है। अब शांत के लिए क्या होगा? तो आगे जो अधिकारी का लक्षण बताया है, जहां पर साधन चतुष्टय संपन्न, ये अनुबंध चतुष्टय है और वो फिर साधन चतुष्टय है। साधनों की प्राप्ति किसको होती है? तो उसके लिए भी शुरू में बता दिया, क्या है वो? हाँ, ये तो षट संपत्ति में आ जाएगा, साधन चतुष्टय में, लेकिन साधन करेगा कौन? तो स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्ण और आश्रम का जो धर्म है उसमें रह करके जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, ये अपने आप में तप है। और ऐसे तप से जब हरि मतलब भगवान प्रसन्न होते हैं, हरितोषणात्, तो साधनम प्रभवेत पुंसाम, ऐसे व्यक्ति को साधनों की प्राप्ति हो जाती है। वैराग्यादि चतुष्टयम्, उसमें ये स्वाभाविक रूप से ये बातें आ जाती है, वैराग्यादि चतुष्टयम्। वह साधन क्या है? तो सुरेश्वराचार्यों ने ऐसा लिखा है कि यया यया भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि, उस आत्मा के बारे में, व्युत्पत्ति मतलब प्रतिपत्ति, ज्ञान होना। कोई तो ब्रह्मसूत्र अद्वैत सिद्धि सब पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते, क्या उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा? तो कहा गीता है, वेदांत सार है, वेदांत परिभाषा है, आत्मबोध, तत्वबोध, वाक्य वृत्ति, एक ग्रंथ ही, उसका नाम है प्रकरणाष्टक, आठ प्रकरणों का एक साथ संकलन किया है। वो पुस्तक भी आप लोग रखो तो बहुत अच्छा है, तो उसमें सब आ जाएंगे एक साथ, प्रकरणाष्टकम। तो यया यया भवेत पुंसाम, पुंसाम मतलब पुरुषार्थी, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, ये मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी अपने आप नहीं होती, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। इस अद्वैत की जो वासना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, उस परमात्मा से मैं अलग कैसे हो गया, क्यों जन्म लेकर के आना पड़ा, ये जिज्ञासा भी भगवत कृपा से ही होती है। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। तो ऐसा जो पुरुषार्थी है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले, वह जब शास्त्र पढ़ने जाएगा तो यया यया भवेत पुंसाम वित्पत्ति प्रत्यगात्मनि, उस प्रत्यगात्मा को, प्रत्यगात्मा मतलब अपनी आत्मा को जानना, साधनम प्रभवेत पुंसाम सा एव प्रक्रियेह स्यात् साध्वीत्याचार्य मे मति। सुरेश्वराचार्यों ने लिखा कि जिस व्यक्ति की जितनी बुद्धि है उसी बुद्धि से उसको अपना आत्मकल्याण करना है। आपके पास धारणा शक्ति ज्यादा है, आप ब्रह्मसूत्र, अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत लेश संग्रह, खंडन खंड, खाद्य सब पढ़ सकते हो, आप पंक्ति लगा सकते हो, आपकी इतनी बुद्धि है। लेकिन हमारी बुद्धि यदि उतनी तेज नहीं है, हमें तो गीता का एक श्लोक भी याद नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे? स्वमति परिणामावधि गृणन, यही तो कहा है महिमन स्तोत्र में, और क्या है? ब्रह्मा जी की बुद्धि बड़ी है तो वो स्तुति शंकर जी की ज्यादा करेंगे, उनके पास समय भी ज्यादा है, हम लोग अल्पायु हैं, समय कम है, बुद्धि उनसे बहुत छोटी है। एक मेढक दूसरे मेढक को यदि हाथी का पेट कितना बड़ा होता है बताएगा तो क्या करेगा? अपना ही पेट फुला के तो दिखाएगा कि हाथी का इतना बड़ा पेट होता है, क्या उतना बड़ा वो बना सकता है? कदापि नहीं। लेकिन उतने से सामने वाले मेढक को पता चल जाता है कि उसका बहुत बड़ा पेट होता है, ये तो पक्का हो गया। जैसे छोटे मेढक बड़े हाथी की नकल करके भी अपने जाति वाले मेढक को समझा देता है, उसी प्रकार से यदि हमारे पास जितनी बुद्धि है उतने से ही, अब लोग बोलते हैं अरे महाराज ये सब तो बड़े लोग जो बहुत पढ़े, हाँ क्या पढ़ेला लिखेला है नहीं बोलते, जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को ब्रह्म मिलता होगा, अनपढ़ को कहां से मिलेगा? ऐसा नहीं है। श्रुति कहती है, वेद में आता है मंत्र, उतई नंग गोपा, उद्धव जी को नहीं हुआ था, देखा गोपियों को इतना परमात्मा के प्रति प्रेम, हमें तो केवल ज्ञान की माला जप रहा हूं, तभी तो उद्धव जी को लगा कि अगला जन्म हो तो इसी ब्रज में आऊं, जहां पर ज्ञान के बाद आनंद यदि नहीं मिला तो कहीं न कहीं वह आनंद अभी आवृत है, और करना क्या है हमें? निरावृत। तो सत और चित तक तो प्राय सब जाते हैं ज्ञान की चर्चा करने से, और आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, उसमें कहीं न कहीं हमारा अभिमान आदि कारण होता है जिससे हम पीछे रह जाते हैं। तो उदाहरण देते हैं, नहीं गांव में कोई माताजी थी और कोई ऐसे महापुरुष आए, तो वो तो बेचारे ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती थी माताजी, तो बोले महाराज आप अपना खुरवा दे दीजिए। अब खुर तो होते गाय भैंस के, बोलना था अपना चरण दे दीजिए, बढ़िया से बोलने वाले होते तो बोलते आप अपने चरण कमल दीजिए। अब वो माता जी को इतने कहां आता था बोलना, तो देहाती भाषा में बोली महाराज अपने खुरवा दे दीजिए। अब वो महापुरुष जो है थोड़ा उनको बुरा लगा कि खुर तो पशु के होते, हमारे पैर को खुर बोलती है, ये माई मेरा अपमान करती है, जाएगी तो जहन्नुम में। माता जी को लगा कि इतने बड़े महापुरुष हैं आशीर्वाद ही दे रहे होंगे, तो कहने लगी महाराज जहन्नुम तो आप जैसे महापुरुषों को नसीब है, हमें कहां मिलना है। तो माता जी का भाव तो बहुत अच्छा था, वो ऐसा नहीं चाह रही थी कि जहन्नुम हमको क्यों बोला यही जाए, उसको तो ये लगा कि इतने बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं तो ऐसी चीजें तो ऐसे महापुरुषों को ही मिलती होगी, हमें कहां मिलेगी। बोलती महाराज जहन्नुम तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हमें कहां मिलेगी। और उसको यदि ये पता होता जहन्नुम क्या है, जन्नत क्या है, तब तो पता चल जाता है कि ये कपट है। तो कहने का मतलब है भाव जब होता है तो परमात्मा, हाँ श्रुति में यही तो आया है कि जब हमारे अंदर वह योग्यता आ जाए, प्रशांत चित्ताय समन्विताय जो कहा है, किसी किसी में ये स्वाभाविक रूप से देखा जाता है, तो वहां ये अनुमान कर लेना चाहिए कि पिछले जन्मों में इसने साधनों का बहुत अभ्यास किया है, जो इस जन्म में स्वाभाविक रूप से ब्रह्म की जिज्ञासा इसके जीवन में आ गई। अन्यथा पहले तो साधनों की तरफ प्रवृत्ति हो नहीं पाती और साधन की प्राप्ति होने के बाद भी शायद हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, ये भी कोई न कोई विघ्न बाधा तो है, कोई कारण होगा। तो उपदेश साहस्री में ये आया है, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय, जिसका चित्त शांत है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो जो मल विक्षेप आदि दोष हैं उससे वह रहित हो चुका, यथोक्त कारिणे जो जो ये साधकों के लक्षण बताए हैं, गुणान्विताय अनुगताय इन सारे गुणों से जो युक्त है, ऐसे मुमुक्षुओं के लिए यह ब्रह्म ज्ञान हमेशा देने के योग्य है, प्रदेयमेतत् सततम् मुमुक्षवे। तो साधन चतुष्टय की बात अब चलेगी, उससे पहले अनुबंध चतुष्टय क्या है ये आप लोगों ने अच्छी तरह से श्रवण किया, पहले भी सुने हुए थे, दोबारा रिपीट हो गया, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा कि विषय संबंध प्रयोजन और अधिकारी ये चार चीजें हुए बिना शास्त्र श्रवण करने में पढ़ने में इच्छा हो ही नहीं सकती। यदि अभी हमें ग्रंथ आदि सुनने पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि अभी हमें अनुबंध चतुष्टय की प्राप्ति नहीं हुई है। विषय प्रयोजनम संबंधो अधिकारी च इति अनुबंध चतुष्टयम्। अस्य वेदांत शास्त्रस्य ब्रह्म एव विषयः, ये आप लोगों ने सुना, और मोक्ष एव प्रयोजनम्, ब्रह्म विषय है और मोक्ष प्रयोजन है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावो बोध्य बोधक भावो वा संबंध, संबंध क्या है, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव अथवा बोध्य और बोधक भाव। अधिकारी कौन है, तो साधन चतुष्टय संपन्नो अधिकारी, चार प्रकार के जो साधन हैं उनसे जो युक्त हो उन्हीं को अधिकारी समझना चाहिए, वो आगे बताएंगे साधन चतुष्टय क्या है। ये अधिकारिता की जब बात आती है तो जैसे अर्थक क्रियाकारिता के लिए जो व्यक्ति जिस कर्म के लिए नियुक्त किए गए हो उसके द्वारा वह कर्म संपादित हो तो अवश्य ही फलदायी होता है। जैसा कि उदाहरण दे रहे, यथा बृहस्पति सबने ब्राह्मण एव राजसूये क्षत्रिय एव तथा वेदांत शास्त्रे साधन चतुष्टय संपन्न एव अधिकारी। बृहस्पति सब नामक जो यज्ञ है वह ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। राजसूय यज्ञ क्षत्रिय ही कर सकता है, अन्य वर्ण के लोग नहीं कर सकते। जैसे इन कर्मों के लिए क्षत्रिय और ब्राह्मण को विशेष रूप से अधिकारी नियुक्त किया, ठीक उसी प्रकार से वेदांत शास्त्र पढ़ने का अधिकारी वही हो सकता है जिसमें साधन चतुष्टय संपन्नता हो। आप लोग घबराना मत, आप लोग भी साधन चतुष्टय संपन्न वाले हैं ना, नहीं है कोई संदेह तो नहीं। अब वो क्या क्या है वो भी सुन लो आगे। पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य क्या है और अनित्य क्या है इस वस्तु का जो विचार किया जाए इसको बोलते हैं विवेक। अब ये मन में कब आएगा, संसार में जितनी भी चीजें हैं सब के सब अनित्य हैं, आत्मातिरिक्तम सर्वम अनित्यम, आत्मा नित्य है और आत्मा के अतिरिक्त सब के सब अनित्य है। यदि ये बात दिमाग में बैठ जाए तो कभी भी किसी भी वस्तु को हमेशा बनाए रखने का आग्रह अपने आप ढीला पड़ जाएगा। और अभी हम लोगों में क्या है, ये चीज खराब ना हो, वो चीज खराब ना हो, उसको बनाए रखे, लेकिन ये तो होना ही है। अब बक्से में कपड़े बंद हैं पहन लो तो ठीक है, नहीं पहने तब भी उसको पुराना तो होना ही है, फटना है ही। अब लोग सोचते हैं कि शायद ज्यादा दिन रखेंगे तो ज्यादा ताजा होगा, वो तो अचार डालने वाली बात हो जाएगी। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो हमारा शरीर है इसको हम लोग क्या चाहते हैं, कभी नष्ट ना हो। अब ये शरीर टिका हुआ है किससे, खा पी करके, और खाने पीने की चीज कैसी है, हाँ सवेरे बनाओ और शाम तक यदि वो न खाओ तो वह अन्न खराब हो जाता है। यत प्रातः संस्कृतम च अन्नम, प्रातः काल का पकाया हुआ अन्न सायं तच्च विनश्यति, सायंकाल तक जो नष्ट हो जाता है उसी अन्न को खा करके उस रस से पुष्ट हुआ हुआ यह जो शरीर है ये फिर क्या नित्य हो सकता है। सड़ी हुई चीज को खाए तो शरीर भी क्या होगा, सड़ने वाला ही है। हम लोग तो घूम फिर के दौड़ो भाई, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, इधर करवट लो उधर करवट लो, कुर्सी में ज्यादा मत बैठो, जमीन पर ज्यादा मत बैठो, ज्यादा देर मत लेटो, थोड़ा लेट लो, इसी में तो पूरा दिन निकलता है। ज्यादा लेट गए तो दिन भर सोता रहता है, बैठे तो आज तो सोने को टाइम नहीं मिला, ज्यादा सोए तो परेशानी, नहीं सोए तो परेशानी, उलटते पलटते पूरा जीवन निकालना है। तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता, जब ये विचार करते हैं तो जब यह शरीर ही अनित्य है तो उस शरीर के लिए जो जो वस्तुएं हैं सब के सब क्या है, अनित्य है। केवल नित्य है तो वह है आत्मा। ऐसा बार बार जो विचार किया जाए इसको बोलते हैं विवेक, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। इह अमूत्र अर्थ फल भोग विराग, इस लोक का कोई प्रयोजन अब नहीं है हमारे लिए, और अमूत्र मतलब परलोक संबंधी भी कोई प्रयोजन न रह जाए। इस लोक में जो कुछ भी कर रहा हूं उससे हमें कोई फल की आशा नहीं है, और कोई शुभ कर्म भी अपने द्वारा हो रहे हैं तो इसके बदले में हमें स्वर्ग मिले नरक न मिले ऐसी इच्छा भी नहीं है। जो व्यक्ति स्वर्ग मिले इच्छा रखता है वही व्यक्ति नरक न मिले ये भी इच्छा रखेगा। दोनों से ऊपर उठ जाना ही तो साधकों का लक्षण बताया। तो यह अस्मिन लोके और अमूत्र पर लोके, दोनों में होने वाले फल भोग, फलों को भोगने की इच्छा न रह जाए, इसी को बोलते हैं वैराग्य, फल भोग विराग। तो विवेक विराग मतलब वैराग्य, और सम आदि षटकम, ये जो छह षटक मतलब समूह, छह चीजें एक साथ होगी जिसमें, वह है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये छह चीजें। शमन, शमन का मतलब है जो अग्नि धड़क रही थी अब वह थोड़े शांत हो गए, अग्नि बुझी नहीं है। जो मन के अंदर अनेक वृत्तियां उदित हो रही थी, ये मन में अग्नि की लपट है, जो ज्वाला है। क्यों हो रहा था, इतनी वृत्तियां क्यों उठ रही थी, क्योंकि अनात्म वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा थी। अब मालूम पड़ा कि इन अनात्म वस्तुओं से अपना कल्याण होने वाला नहीं, तो धीरे धीरे उन इच्छाओं में भी कमी आने लग जाए, यही है मन का शमन। मनोनिग्रह समः, मन निगृहित कैसे होता है, हमारा मन विक्षिप्त कब होता है और शांत कब होता है तो अपने आप पता चल जाएगा। जब जब किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उठे, वृत्ति उदित हो जाए, यह है मन की ज्वाला, मन के लपट, और जब वह इच्छा कम होने लग जाए तो यह है उस लपट की कमी। तो धीरे धीरे मन शांत होता है। तो मनोनिग्रह समः और इंद्रिय निग्रह दमः, इंद्रियों का निग्रहण करना, ठीक है, हम लोग बोलते हैं अरे देखने से क्या फर्क पड़ता है, सुनने से क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। बार बार देखो तो उसको फिर पाने की इच्छा होती है। इसलिए तो हमारे यहां कहते हैं भाई सुनो, श्रवण करो। क्यों कहा गया श्रवण करने के लिए? जब बार बार सुनते हैं तो पहले तो श्रवण करने से जो आपात ज्ञान होता है उसी को बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, और जब ये दृढ़ होने लगता है तो आपका मनन निधिध्यासन अपने आप होने लगता है। बार बार जिसने श्रवण किया है, अभी आप लोग इतने सुनते हो, सुने हुए हो, चाहे कोई भी ग्रंथ यहां आप लोग सुनते हो, ब्रह्मसूत्र से लेके बड़े से बड़ा ग्रंथ, बार बार सुने हुए का ये फल है कि आप लोगों को ज्यादा समझने में कठिनाई नहीं होती। ये एक दिन का प्रयास नहीं है, कई दिनों से वर्षों से लगे हुए हैं, तब जा करके आपको न तो समझने में कठिनाई होती है और न ही हमें बोलने में कठिनाई होती है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे हम बोले जा रहे हैं, सामने वाले कुछ समझ ही नहीं रहे। ऐसा होता है जहां कभी स्वाध्याय प्रवचन नहीं चलता ना, वहां आप लगातार ऐसे बोलेंगे तो एकदम ही उनको लगता है क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या है ये अंतःकरण, क्या है मन बुद्धि चित्त अहंकार, सप्तदश तत्व वाले सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, ये सब तो बार बार सुने हुए का फल है ये। तो जब श्रवण दृढ़ हो जाते हैं तो उसी में फिर मनन और निधिध्यासन स्वतः होने लगता है। इसलिए पहले ठीक से सुना जाए। कई बार कोई घर से निकलते ना बाजार के लिए, तो चलते चलते लोग बोल देते हैं ये ले आना, वो ले आना, हाँ और क्या लाना है, अरे कागज में लिख लो। नहीं नहीं हमें सब याद है। आज जब वहां गए लेने के लिए तो कुछ ना कुछ जरूर भूलेंगे। हमने पहले ही कहा था तुम लिख के ले जाओ, तुम लिख लेने गए, हुआ ना आखिर भूल गए ना। वैसे ही जब हम यहां सुनते हैं तो लगता है ये भी सुना हुआ है, वो भी सुना हुआ है। आज जब बोले भाई तितिक्षा किसको कहते हैं बताओगे? हाँ वो तो देखना पड़ेगा, कहां देखेंगे। तो मनोनिग्रह समः, इंद्रिय निग्रह दमः, सम दम उपरति। तितिक्षा बाद में, भले आगे पहले भी ले सकते हो लेकिन इससे मालूम पड़ता है कि आपको याद नहीं है। सम दम तितिक्षा में चले गए, पहले उपरति। उपरति का मतलब समदम तितिक्षा है, समदम उपरति। उपरति मतलब व्यवहार के प्रति उदासीन हो जाना, मोटा मोटा अर्थ है, बाकी तो जो भी व्याख्या कर लेना। उपरति का मतलब इतना ही याद रखो, व्यवहार के प्रति उदासीन हो जाना। अब आग्रह बुद्धि नहीं है कि नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे लोग। दुनिया में ये है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। समाधि षटकम की बात चल रही है तो सम दम उपरति, चौथा है तितिक्षा। जो सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। किसी भी प्रकार के आए हुए सुख दुख आदि को स्वाभाविक रूप से सह लेना। बारिश होती है तब भी हम लोग चिल्लाते हैं बहुत बारिश हो गई, नहीं होती है तो बोलते हैं बारिश नहीं हुई। गर्मी ठीक से न पड़े तो खेती अच्छी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी फसल अच्छी होती है बाद में, क्योंकि भगवान सूर्य के द्वारा जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का जो काम चलता है, भगवान सूर्य अपने 6 गणों के साथ, प्रत्येक महीने में सूर्य के गण अलग अलग हैं, और उस महीने का मास नाम जो पड़ा वो भी अलग है। सूर्य का नाम इसलिए द्वादश आदित्य है, 12 महीने का जो ये नाम पड़ा है भगवान सूर्य के नाम से। और इन 12 महीनों में प्रत्येक महीने के उनके ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सर्प, वनस्पति आदि सब अलग अलग होते हैं, जिसको हम लोग सीजन बोलते हैं ना, सीजनल। वो सीजनल वही है कि भगवान सूर्य अपने 6 गणों के साथ प्रत्येक महीने में जो यात्रा करते हैं, हर महीने के उनके 6 गण अलग अलग हैं, और उसके अनुसार यदि आप करो ना तो देखो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अभी परेशानी क्या है, अब मान लो कोई चीज कहीं होती है, उस वातावरण के अनुसार वहां की चीज वहां के लिए ठीक है, उसी चीज को यदि हम यहां प्रयोग करेंगे और यहां का वातावरण ऐसा नहीं है, वो चीज हमें प्रतिकूल कर जाती है, अनुकूल नहीं पड़ सकती। हर चीज में यही है। आप गुजराती हो तो गुजराती के बीच में गुजराती बोलो, और जहां गुजराती नहीं समझ रहे वहां गुजराती बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या बोल रहे पता नहीं चल रहा है। तो चाहे भाषा की बात हो, खाने पीने की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो, ये देश काल के अनुसार ही शोभायमान होते हैं। तो सहनम सर्व दुखानाम, सर्व दुख नाम ले लिया, बोलते ये कष्ट तो हम सह सकते हैं, वो कष्ट नहीं सह सकते। और सर्व लगा देने के बाद मतलब हुआ किसी भी प्रकार का जो दुख है उसको हमें सहन करना है। तितिक्षा में व्यक्ति के अंदर निवृत्ति का भाव दृढ़ होता है, और तपस्या में प्रवृत्ति में दृढ़ता आती है। और हमें तो प्रवृत्तियों से छूटना है, जिसके लिए उपरति पहले आ गया। उपरति का मतलब ही कह दिया था व्यवहारों के प्रति उदासीनता, आग्रह बुद्धि नहीं रखना, तभी वह व्यक्ति तितिक्षा की ओर आगे बढ़ सकता है। उधर उपरति यदि नहीं हुई है, अभी व्यवहारों के प्रति उदासीनता नहीं है, तो फिर तितिक्षा भी मिलना थोड़ा कठिन होगा। तो सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार मत करो। प्रतिकार का मतलब बदला लेना, जो है ठीक है, बारिश हुई है तो हुई है, अब बारिश नहीं हो रही ये भी बोलना ठीक नहीं, बारिश बहुत हो रही है ये भी बोलना ठीक नहीं तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी। सरदार जी गुरुद्वारे जा रहे थे, बोले सरदार जी गुरुद्वारे जा रहे, बोले नहीं गुरुद्वारा जा रहा हूं। तो बारिश हो रही है क्या? अरे भाई हो रही हो तो हमको भी तो दिख रही है, इसमें बोलने की जरूरत क्या है। लेकिन हम लोगों को बोले बिना रहा नहीं जाता है, जरूर कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। भगवान ने वाणी इतनी दे रखी है ना, धड़ाधड़ निकलती है बाहर। जिसको बोलने की आदत हो कह रहे बस तो आधा घंटा चुप रहो, तो उसमें उसको बुरा लग जाता है, मुझे चुप रहने के लिए क्यों कहा, केवल इसी को बोलने का अधिकार है क्या। तो अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, यही है चिंता करना, विलाप करना, हाय तोबा मचाना, ये सब जब ना हो तो समझ लेना चाहिए अपने अंदर तितिक्षा का भाव धीरे धीरे आ रहा है। तितिक्षा में निवृत्ति होती है और तप में प्रवृत्ति होती है। तप में आपको लगना पड़ता है और तितिक्षा में जो चीज जैसी है उसी को स्वीकार कर लेते हैं। सर्दी है गर्म कपड़े पहन लो, बात खत्म। ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, बोलने से कम नहीं होने वाली। तो समाधि षटकम, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, और समाधान संशय आदि की निवृत्ति हो जाना। जो हमें जानने में तक कठिनाई हो रही थी, अब पता चल गया कि ये चीज है। तो ये जो छह चीज हैं इसको बोलते हैं समाधि षटकम। तो पहला हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरा हो गया समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान समाधि षटकम, और चौथा हो गया मुमुक्षुत्वम च, मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ये चार चीजें जिसमें हो उसको बोलते हैं साधन चतुष्टय संपन्न। लेकिन साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, ये वेदांत सार में आया कि साधन चतुष्टय संपन्न जो होगा ऐसा प्रमाता, प्रमाणों के द्वारा जानने वाला व्यक्ति ही अधिकारी है। लेकिन इससे पहले किसकी आवश्यकता है? अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय पूर्वक साधन चतुष्टय जब होगा, अब पुनः नित्यानित्य वस्तु विवेक जो अभी आप लोगों ने सुना था, उसी बात को ये थोड़े व्याख्या पूर्वक बता रहे हैं कि कैसे नित्य और अनित्य का विचार करें। तो ब्रह्मैव नित्यम जगद अनित्यम, ब्रह्म ही नित्य है और जगत अनित्य है। इति श्रुति स्मृति पुराणादिना, श्रुति के द्वारा, स्मृति के द्वारा और पुराणों के द्वारा। पुराणों में कितने, 18 पुराण है ना, 18 पुराणों में कितने श्लोक हैं? 400,000 श्लोक है, ये याद रखना। 400,000 श्लोक मिला करके 18 पुराण है, और प्रत्येक पुराणों में फिर अलग अलग है, किसी में 9,000, किसी में 24,000, किसी में 23,000, किसी में 81,000, किसी में 55,000, किसी में 59,000, ऐसा है। तो सबको मिला के 400,000 श्लोक में व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है। जैसे वेद के मंत्र हैं 100,000, पुराणों के श्लोक 400,000, और महाभारत के ये भी 100,000 ही है ना, शत सहस्रयाम संहितायाम, 100,000 मतलब 100,000, तो 100,000 ही हुआ। तो ये महाभारत में है, 100,000 महाभारत में। ये सब हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं ना, इन सब के मोटा मोटा परिचय हुई भी बहुत बड़ी बात है। तो श्रुति स्मृति, स्मृति ग्रंथ उसको बोलते हैं, जैसे है तो गीता महाभारत के अंतर्गत, लेकिन उसमें अर्जुन को अपने स्वरूप की जो स्मृति हुई है, इसलिए गीता भी स्मृति ग्रंथ है। जिन उदाहरणों से, कर्मों से अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, याज्ञवल्क जी ने लिखा याज्ञवल्क स्मृति, मनु जी ने लिखा मनुस्मृति। तो ये स्मृति के द्वारा, और श्रुति मतलब उपनिषद आदि के द्वारा, पुराण मतलब 18 पुराण और उपपुराण आदि के द्वारा स्वयमेव जायमानम ज्ञानम, इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह अपने आप में क्या है, तो इससे पता चल जाता है कि ब्रह्मैव नित्यम और जगद अनित्यम। व्यास जी ने भी तो सोचा था ना, कलयुग में लोग इतने पुराणों को कौन पढ़ेंगे। हमारे पंडित जी हैं, वो बता रहे थे कि एक कोई सज्जन है, वो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं घर में 4-5 बजे। बोले सवेरे उठ के क्या करते हो? बोले सवेरे उठ करके पुराणों को पढ़ता हूं। कि इतने सारे पुराण है, कब पढ़ने के टाइम मिले न मिले, सवेरे सवेरे पढ़ लेता हूं व्यास जी ने क्या लिखा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सभी पुराणों को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आप लोग भी संकल्प ले लो। यहां तो वो महिला मंडल के द्वारा 18 पुराणों की कथा भी हो चुकी है, लेकिन वो कथाकार कथा करके गए, आपने सुन लिया, हो गया। लेकिन उस पुस्तक एक बार दोबारा अपने आप भी तो पढ़ो, फिर पता चलेगा क्या है ये। महाभारत को पढ़ो, अपने आप सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि किस बात पर शास्त्रों में जोर दिया गया है। तो यही है, ब्रह्मैव नित्यम और जगद अनित्यम। व्यास जी ने अंतिम में निचोड़ में लिख दिया, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। भाई 18 पुराणों को यदि कोई पढ़ेगा भी और नहीं भी पढ़ पाएगा तो लोगों को लगेगा इतने पुराण में क्या लिखा होगा। कोई लोग बोलते ना आजकल, सार की बात बता दो, इतने कौन सुनने के लिए टाइम नहीं हमारे पास। तो सार की बात है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणों में व्यास जी का दो ही वचन है, परोपकार पुण्याय और पापाय परपीडनम। पुण्य कमाना है तो परोपकार करो, और पाप कमाना है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाओ। तो दूसरे को पीड़ा देना पाप है, और परोपकार करना यही पुण्य है। पुण्य और पाप का निचोड़ निकाल दिया, पुण्य की प्राप्ति होगी तो मोक्ष मिलेगा, पाप करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। ऐसा शास्त्रों के द्वारा नित्य और अनित्य का विचार करें। आगे वैराग्य का जो स्वरूप है, ये आप लोग सुने हुए तो हो, लेकिन यहां पर एक बहुत जबरदस्त बात कही है, लेकिन मैं आज नहीं कहूंगा, तो इसके लिए आपको कल आना पड़ेगा। ये समझो कि आज संडे है तो छुट्टी करो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हरिओम।
हरिओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। महाराज जी ने बहुत भाव से बताया वेबसाइट के बारे में। महाराज जी एक बात बताऊं आपको, आप तो लंदन और भी घूमते हैं विदेश में, तो विदेश से कई ऐसे फोन आते हैं कि वो लोग प्रेमपुरी की जो वेबसाइट है या तो उसकी कैसेट्स है वो यहां से ले जाके पूरे ग्रुप से मिलकर पूरी चर्चा हर हफ्ते में सैटरडे संडे कुछ समय निश्चित रहता है, जो भी संत विद्वान उनको पसंद हो वो ले जाके सब स्वाध्याय जैसा सब मिलके करते हैं। एक बहुत ही बड़ी बात प्रेमपुरी के द्वारा ये हो रही है और हर देश विदेश में, ऐसे गुजरात में से भी सुनाया गया है कि वहां भी हो रही है, लंदन से, मॉरिशस से, अमेरिका से, हर जगह से ये बात सुनाई दे रही है। तो यह आप संतों के आशीर्वाद से यह यज्ञ का कार्यक्रम पूरे विश्व में, यह स्वाध्याय और प्रातः प्रवचन है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन।